नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग दो पर बात करेंगे
जी।
ये पुस्तक जो 1988 से 90 के बीच लिखी गई क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है। पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
हाँ, और उनकी इच्छा थी कि इसका प्रकाश, मतलब ये विचार जन जन तक पहुंचे।
बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में, आज के समय में, अपनी भीतरी क्षमताओं, अपनी प्रतिभा को निखारना क्यों इतना जरूरी हो गया है।
हाँ, देखिए, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि जैसे बड़े कामों के लिए बड़ी शक्ति चाहिए ही होती है, है ना, वैसे ही समाज की जो बड़ी जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए परिष्कृत, मतलब निखरी हुई प्रतिभाओं की सख्त जरूरत है।
अच्छा।
और ये पुस्तक यही बताती है कि प्रतिभा कोई बाहरी चीज, कोई सिर्फ स्किल नहीं है, बल्कि वो हमारी अंदर की ऊर्जा, हमारी जीवनी शक्ति से जुड़ी है गहराई से।
तो चलिए इसी जीवनी शक्ति और प्रतिभा को निखारने के सफर को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत में ही पूज्य गुरुदेव ने शरीर की तुलना एक मोटर गाड़ी से की है ना?
जी बिल्कुल। ढांचा तो हार्ड मास का है, पर असल में चलती किससे है? वो प्राण विद्युत, या जिसे हम जीवनी शक्ति कह सकते हैं, उससे।
और अगर ये कम हो जाए
तो फिर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां घेर लेती हैं। ये पूज्य गुरुदेव का कहना था।
और ये बात आज भी कितनी सच लगती है, नहीं? आजकल हम देखते हैं चिकित्सा पद्धतियां ज्यादातर लक्षणों पर ध्यान देती हैं।
हाँ बिल्कुल। जो मूल कारण है, यानी जीवनी शक्ति की कमी, उस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। पूज्य गुरुदेव का तो साफ मानना था कि स्वास्थ्य हो, पुरुषार्थ हो, मतलब हमारी कर्म करने की क्षमता, सब कुछ इसी आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर है।
अच्छा, ये आंतरिक ऊर्जा, इसके बारे में और क्या बताया है?
ये ऊर्जा देखिए तीन स्तरों पर काम करती है। शरीर में होती है ओजस के रूप में, जिसे जीवन शक्ति कह सकते हैं।
ओजस, ठीक है।
मस्तिष्क में होती है तेजस के रूप में, मतलब मानसिक प्रखरता, सोचने समझने की शक्ति।
और तीसरा
है अंतःकरण में वर्चस के रूप में, मतलब एक तरह का आध्यात्मिक प्रभाव या आभा।
ओजस, तेजस, वर्चस, ये बहुत दिलचस्प है। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसे संभालना या बढ़ाना पूरी तरह हमारे हाथ में है।
जी।
इस पर शायद कुछ लोग सोचें कि क्या भाग्य या बाहरी हालात का कोई रोल नहीं?
ये सवाल आता है मन में, स्वाभाविक है, पर पूज्य गुरुदेव का जोर इस बात पर था कि बाहरी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
अच्छा।
असली कंट्रोल हमारे अपने प्रयासों में, हमारी जीवन शैली में है। जीवनी शक्ति कम क्यों होती है? हमारे असंयम से, अव्यवस्थित जीवन से, नेगेटिव सोच से। तो इसे सहेजना और बढ़ाना, ये हमारे संकल्प और हमारी साधना पर निर्भर करता है। यही इस पुस्तक का एक तरह से केंद्रीय संदेश है।
इसी संकल्प की बात आपने की तो पुस्तक में मनोबल की शक्ति के कुछ बड़े कमाल के उदाहरण भी दिए गए हैं। वो इंग्लैंड वाली पैट्रिक मैरी की कहानी।
हाँ हाँ, वो तो अद्भुत उदाहरण है। पैट्रिक मैरी, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर है और बस 6 महीने बचे हैं।
जी।
उस समय इंग्लैंड में एक जरूरी जांच मशीन, कैट स्कैनिंग, उसकी कमी थी, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी बची हुई ताकत एक और मशीन खरीदने के लिए पैसे जुटाने में लगा दी,
ताकि दूसरों को इंतजार न करना पड़े।
बिल्कुल। और हुआ ये कि वो अपने इस मिशन में इतनी ज्यादा डूब गई, इतनी व्यस्त हो गई कि अपनी बीमारी को जैसे भूली गई।
सच में?
हाँ। और कुछ समय बाद जब उनकी फिर से जांच हुई तो पता चला कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं।
अरे वाह।
तो ये दिखाता है कि एक मजबूत इरादा और परमार्थ का भाव, मतलब दूसरों की भलाई में जुटना, वो हमारे शरीर पर भी कितना गहरा असर डाल सकता है।
इसी को पूज्य गुरुदेव मनोबल या संकल्प शक्ति कहते हैं।
जी हाँ, जो असाधारण काम करवा सकती है।
ये तो कमाल की बात है, पर क्या ये सिर्फ ऐसी बड़ी जीवन मरण वाली स्थितियों में ही काम करता है, या रोजमर्रा की छोटी चुनौतियों में भी ये मनोबल काम आता है?
नहीं नहीं बिल्कुल, मनोबल हर स्तर पर काम करता है। देखिए, छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है।
हाँ, सही बात है।
और वही आत्मविश्वास फिर बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। आप हनुमान जी का समुद्र लांघना देख लीजिए, या चाणक्य का एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को प्रेरित करके इतना बड़ा साम्राज्य बदल देना। ये सब संकल्प शक्ति के ही उदाहरण है।
बिल्कुल, ये सब संकल्प शक्ति के ही प्रमाण है।
पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि भारत की महानता का आधार उसका आत्मबल रहा है, और योग विद्या जो है वो इसी आत्मबल को जगाने का विज्ञान है, न कि सिर्फ कुछ आसन या क्रियाएं।
एकदम सही कहा। योग का असली मतलब ही है व्यक्तित्व का परिष्कार, मतलब खुद को बेहतर बनाना, अपनी पर्सनालिटी को निखारना।
और आत्मबल, ये क्या है?
आत्मबल मतलब वो अंदरूनी शक्ति जो हमारे संकल्प और हमारे नैतिक बल से आती है।
पुस्तक में इसके दो मुख्य आधार बताए हैं।
कौन से?
पहला है साहसिकता, यानी हिम्मत, जरूरी जोखिम उठाने का भाव, जज्बा।
और दूसरा
है सुव्यवस्था, मतलब जीवन को एक अनुशासन से, एक योजना बनाकर चलाना, सलीके से जीना।
साहसिकता और सुव्यवस्था, इन दोनों में संतुलन बनाना, ये सुनने में तो आसान लगता है पर शायद असल जिंदगी में मुश्किल होता होगा।
हाँ बिल्कुल, यही संतुलन साधना ही तो असली चुनौती है। सोचिए अगर सिर्फ साहस हो पर कोई व्यवस्था ना हो तो ऊर्जा तो बिखर जाएगी।
सही बात है।
और अगर सिर्फ व्यवस्था ही व्यवस्था हो पर कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हो तो जीवन एक जगह ठहर जाएगा। पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे नेपोलियन का आल्प्स पार करना या हमारे प्राचीन ऋषियों का मुश्किल जगहों पर जाकर संस्कृति फैलाना। इन सबके पीछे साहस और व्यवस्था का यही संतुलन था।
और यही गुण है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाते हैं।
बिल्कुल।
तो फिर इस आत्मबल को, इस प्रतिभा को जगाने और निखारने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके, कुछ ठोस उपाय भी बताए हैं पुस्तक में।
हाँ हाँ बिल्कुल हैं। पुस्तक के आखिर में कुछ विज्ञान सम्मत, मतलब साइंटिफिक प्रयोग दिए गए हैं। जैसे एक है स्वसंकेत, ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं।
स्वसंकेत
मतलब इसमें हम पॉजिटिव विचारों को, विश्वासों को बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस मन को, अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे, यो यदृच्छ स एव स, यानी व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है।
अच्छा, और क्या तरीके?
एक है प्राणाकर्षण प्राणायाम। ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, ये ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा फैली हुई है उसे होश पूर्वक अपने अंदर खींचने और जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है।
दिलचस्प।
फिर एक दर्पण साधना भी है। इसमें आईने के सामने बैठकर आत्म अवलोकन करना होता है, अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी कमियों को देखना और उन्हें दूर करने का संकल्प लेना।
तो ये विधियां बताती हैं कि प्रतिभा का विकास कोई रहस्य नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो सकती है।
जी हाँ, एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया।
तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही समझ आता है कि हम सबके अंदर अपार क्षमताएं हैं, एक शक्तिशाली जीवनी शक्ति है।
बिल्कुल।
बस जरूरत है उसे पहचानने की, अपने मनोबल से उसे जगाने की और फिर साहस और सुव्यवस्था के साथ उसे निखारने की।
और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा, ये आज के युग की मांग है।
हाँ,
निखरी हुई प्रतिभाएं ही समाज की, दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। तो प्रतिभा परिष्कार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है।
बिल्कुल सही। तो आज के इस बातचीत के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, हमारे अंदर ऐसी कौन सी सोई हुई शक्ति या प्रतिभाएं जिसे अगर हम जगा लें तो न केवल अपना जीवन बदल सकता है बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।